दंडोत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखे मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी सात संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, हम लोगों को शांति प्रदान करने के लिए, परम सुख देने के लिए उन्होंने हमें सुखमणि प्रदान किए। सुखमणि साहेब साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का हृदय है। हृदय में प्रेम का वास होता है। यदि सुखमणि को मन से सुनोगे तो इसके रहस्य को नहीं जान सकते। सुखमणि साहेब को सुनने के लिए हृदय की आवश्यकता है, अर्थात श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से यदि सुखमणि साहेब सुनोगे आप तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन प्रेम पूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन भक्तिमय हो जाएगा, आपका मन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में लग जाएगा, जिससे आपका जीवन उत्तम हो जाएगा और जीवन का रहस्य तुम जान पाओगे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी कौन है, ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ब्रह्मज्ञानी की महिमा क्या है, यह बता चुके हैं। अब साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा पुरुष जो रहता तो संसार में है लेकिन संसार की माया, संसार का विषय, संसार की तृष्णा, संसार का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको स्पर्श नहीं करता, उसको छूता नहीं है। जिस प्रकार से माताओं से विनती है कि बच्चों को थोड़ा नियंत्रित रखो, क्योंकि कथा में वृत्ति भंग होने से सबका चित्त इधर उधर होता है और वो पाप के भागी होते हैं। यहाँ पर एक विनती और भी है कि कुछ पता चला कि कुछ लोग बैठ के गप्पे भी आपस में करते हैं। गप्पे करने के लिए सामने बहुत अच्छा पार्क है, एक दूसरे के ऊपर कूड़ा डाली जाओ विचारों का। यहाँ पर तो निरोल अपनी वृत्ति साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी के चरणों में डालना है, तभी साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज की बख्शिश होगी। यहाँ पर एक ही भाव लेके आना है कि हे सच्चे पातशाह, सगल द्वार को छाड़ के गहे हो तुहारो द्वार। मैंने सारे थां छोड़ करके आपके चरणों में आया हूँ, अब आप हमें तार दें या डुबो दें, क्या करें ये आपकी मर्जी है। अपने को सरेंडर गुरु के चरणों में करना है। जो व्यक्ति अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, गुरु उसको दोनों हाथों से उठाकर अपने छाती से लगाते हैं और अपने जैसा ही बना देते हैं। क्योंकि संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओह पारस कंचन करे संत करे आप समान। इसलिए सत्संग में जब आओ तो सत्संग को सुनो, ना इधर उधर देखना है, अपना जो मन है गुरु चरणों में लगाना है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं आज श्लोक उर धारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तारे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा पुरुष जो रहता तो जगत में है, शरीर तो उसका जगत में होता है, लेकिन उसकी बुद्धि, उसका हृदय, उसका अंदर का भाव, वह एक ओंकार जो प्रभु परमात्मा है उसमें लीन रहता है। कमल के समान संसार का जल उसको छूता नहीं है, वह सदैव अलेप रहता है। उर धारे जो अंतर नाम, प्रभु को पाने के मुख्य दो मार्ग हैं, एक है भक्ति और दूसरा है ज्ञान। जिस प्रकार से आकाश में पंछी को उड़ने के लिए दो पंखों की जरूरत होती है, इसीलिए भक्ति और ज्ञान हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है। भक्ति से भी प्रभु को पाया जा सकता है और ब्रह्म ज्ञान से भी। ज्ञान का मार्ग है, उसमें यदि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी मिल जाए, गुरु संत महापुरुष, और तुम उनके चरणों में सब कुछ छोड़ दो, तो ज्ञान होने में कोई देर नहीं लगता है। उसमें तुम्हारा समर्पण सबसे ज्यादा आवश्यक है। ऐसा समझो कि आपको पावन पवित्र तीर्थ अमृतसर जाना हो तो एक तो मार्ग है कि यहाँ से आप एरोप्लेन पर बैठो और सीधा अमृतसर पहुँच जाओ, और एक मार्ग है कि यहाँ से कार से चलो और कई एक देश होते हुए सड़कों के आगे पीछे हरियाली, पंछियों का अवलोकन, आकाश को देखते हुए, सब कुछ नज़ारा को देखते हुए किसी तरह कभी समुद्र आ गया तो अपने कार को जहाज़ पर रख दिया, पानी वाले जहाज़ पर, फिर आगे उतर गया। सब कुछ दृश्य को देखता हुआ अमृतसर पहुंचना है। यों तो ये दूर मार्ग है, ये तो मार्ग बहुत दूर होता है, लेकिन भक्ति की अपनी महिमा है, भक्ति का अपना सौंदर्य है। एरोप्लेन से यहाँ बैठा और वहाँ उतर गया, जहाँ जाना था पहुँच तो गया, लेकिन जो रास्ते की जो एक आनंद है, कठिनाइयाँ और दृश्य का दर्शन, पंछियों के गुनगुनाहट की आवाज़ और नदियों का विस्तार, आकाश का विस्तार, ये कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। भक्ति मार्ग है, वह भक्ति मार्ग से परमात्मा के पास पहुंचा जा सकता है, लेकिन उस मार्ग में बहुत विरह, बहुत हृदय में प्रेम और तड़प चाहिए। सब कुछ को छोड़ करके एक प्रभु के लिए दीवानापन जब तक ना हो, तब तक भक्ति होती ही नहीं। भक्ति का भाव ये है, जो हमारा इष्ट है वाहेगुरु परमात्मा, उसको पाने के लिए संसार की सारी मर्यादाओं को छोड़कर उसका गुणगान गाते हुए उस प्रभु के नाम में लीन हो जाना। भक्ति का भाव यह है कि जो इष्ट है वाहेगुरु, वो चलते फिरते, सोते बैठते जागते उस वाहेगुरु के दीदार के लिए पागल हो जाना। भक्ति है अपने इष्ट के लिए पागल हो जाना। भक्ति में प्रेम प्रधान होता है और ज्ञान में वैराग्य प्रधान होता है। ज्ञान तो ऐसा है कि यदि हृदय साफ हो तो वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं, हे राम, आँख को पलक मारने में देर हो सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने में इतना भी देर नहीं। लेकिन जो व्यक्ति चार साधन संपन्न हो, जिसके अंदर विवेक हो, वैराग्य हो, सम दम श्रद्धा समाधान तितिक्षा उपराम और मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा का भाव ये है कि ये संसार बंधन से हटकर प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा, इसको मुमुक्षा कहते हैं। जब ऐसा व्यक्ति हो तो उसको ज्ञान होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। पहले साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी की चर्चा, ब्रह्म ज्ञानी की महिमा, ब्रह्म ज्ञान कैसे हो, ये सारा कुछ बता चुके हैं। अब भक्ति मार्ग से परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, उर धारे जो अंतर नाम, उर नाम हृदय का है। नाम को धारण करने के लिए गुरु महाराज हृदय में कह रहे हैं। एक तो नाम है जो हम मन से जाप करते हैं और एक नाम है प्रभु का जो हृदय से जपा जाता है। मन से प्रभु का जो जाप है वह एक फॉर्मेलिटी है, जैसे टेप रिकॉर्डर जाप कर लिया ऐसे मन जाप कर लिया। भाव से रहित, प्रेम से रहित जो जाप है वो मन से जाप है। और हृदय से जाप का भाव है कि एक एक पल जो है उस प्रभु का याद, उसको पाने के लिए तड़प और उसके दीदार के लिए व्याकुल हो जाना और फिर उसको पुकार करना, यह हृदय से जाप है। यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं, उर्धारे जो अंतरनाम सर्व में पेखय भगवान, जो प्रभु का नाम है वाहेगुरु, उसको हृदय में धारण करना है, मन में नहीं। एक समय की बात है, एक बहेलिया तोते को अपने जाल में फंसाकर ले जा रहा था। उस तोते को एक पिंजड़े में डाल दिया और पिंजड़े में डाल करके अपने घर में ले आया उसे। वहाँ पर संत आ गए। संत कहते हैं, भाई जो कुछ तुमको देना है तो दे दो मुझे। वो बहेलिया जो पंछियों को फंसाता था, वो कहता है कि मेरे पास तो और कुछ पैसा वगैरह है नहीं, मेरे पास तोता ही है जो पिंजड़े में है, आप इसी को ले लें और मुझे बरकत दें कि मुझे और फंसाऊं, क्योंकि जो चीज़ होगा जिसके पास वही देना है ना। चोर प्रभु से क्या मन्नत मानेगा कि चोरी ना करूं, या पॉकेट मार क्या मन्नत मान करके जाएगा? वो तो यही मन्नत मांगेगा ना कि जिसके हाथ में पॉकेट डालूं उसमें पूरे पूरे डॉलर हों, पाउंड हों, खाली हाथ ना जाए। हर एक व्यक्ति जो प्रभु के आगे जो मांगता है, मांगने की अलग शैली होती है, मांगने का तरीका अलग होता है, मांग अलग होता है। वह बहेलिया नमस्कार करके उस पिंजड़े को दे दिया तोता सहित। संत हृदय नवनीत समाना, संत तो परोपकारी होते हैं, उन्होंने उसको उपदेश देने लगे कि हे तोते, ये मंत्र को याद रख। मंत्र क्या है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। ये उसको, ये मंत्र उसको रटा दिया। अंदर जो पिंजड़ा में जो तोता है वो पढ़ रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। बहुत अच्छी तरह रट लिया उसने। अब संत सोचते हैं कि ये मंत्र आप भी पढ़ेगा और दूसरों को भी पढ़ाएगा, तो जितने भी तोते हैं वो फंसेंगे नहीं। संत ने ये उपदेश दे के चला गया और तोते को पिंजड़े से निकाल करके उड़ा दिया आकाश में। उसके साथ इस मंत्र को और भी तोते सुनने लगे, भी क्या बोल रहा है ये मंत्र। उसके साथ साथ वो और भी तोते थे, वो भी जाप करने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। कुछ समय के बाद शिकारी आया, जाल बिछा दिया और सारे तोते जो देख रहे थे अन्न, वो आकर के उस जाल में बैठ गए और दाने खाई जा रहे हैं और मंत्र बोली जा रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। और सारे के सारे जो है दाना खाने के लिए वहाँ बैठ गए, शिकारी उसको जो है जाल में फंसा दिया ले जाए। वो शिकारी सोचता है ये फंसा हुआ भी क्या बोल रहा है, शिकारी आएगा। यदि विचार करके देखा जाए ना तो हमारा जीवन उससे कुछ ज्यादा नहीं है। अभी 5-6 दिन पहले किसी के घर में जाना हुआ, तो एक माता कहती है, स्वामी जी मैं सारा दिन में 3 सुखमनी कर लेता हूँ और 8 तो जो रोज़ जपजी साहिब करता हूँ, कभी कभी 10 भी कर लेता हूँ। मैं उसको बहुत प्रेम से नमस्कार किया कि माता तू धन्य है, पूजनीक है। भोजन वगैरह कराई प्रेम से, और उसके बाद अपना दुख का लिस्ट निकाली बहुत लंबा, जिसको एक दिन में भी पढ़ना बहुत मुश्किल था। स्वामी जी दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं है मुझको नहीं है, और शांति तो मैंने कभी जानी नहीं। तो माता से मैं पूछा कि आप इतना सुखमनी करते हो, 3-3 रोज 8 जपजी साहेब रोज करते हो, आपका जीवन बदला नहीं? कहते यही तो मैं हैरान हूं कि मैं आम आदमी से ज्यादा चिंतित हूं, ज्यादा परेशान हूं, उसका कारण क्या है? हम एक गिनती से प्रभु का नाम लेते हैं, गिनती से पाठ करते हैं, वो तोते वाली बात है, समझे ना? एक जाप है मन से, एक जाप है हृदय से। जो व्यक्ति प्राणों से प्रभु के नाम को जपता है, एक छिन जे एक तिल ध्यायो काल फांस के बीच न है। गुरु महाराज तो एक क्षण की बात कर रहे हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, और एक क्षण, आखिर कोई ना कोई चूक तो हो ही रहा है ना। उसका मूल कारण यही है, एक तो है पानी पानी बोलना और एक है पानी पीना। पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझती, लेकिन एक बार एक गिलास पी लो आपकी प्यास बुझ जाती है। इसी तरह से जीवन का उद्देश्य है उस परम सत्य की अनुभूति। जो परम सत्य है, सुप्रीम बीइंग, एब्सोल्यूट ट्रुथ, वह हमारे अनुभव में आ जाए, और वह अनुभव में तभी आ सकता है जब आप किसी ब्रह्म ज्ञानी, किसी अनुभवी संत के चरणों में जाकर अपनी सारी मान्यताओं को छोड़कर वो जैसा कहते हैं वैसा चलो, और कोई नान्या पंथा विद्यते ऐना, और कोई मार्ग नहीं है। अपने से नहीं होगा। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, उर्धारे जो अंतर नाम, प्रभु के नाम को, वाहेगुरु को जो हृदय में धारण करता है, सर्व में पेखय भगवान, जो अंदर अपने हृदय में वाहेगुरु को धारण करेगा वही सब में प्रभु को देखेगा। यह शर्त है। जिसके हृदय में प्रभु का नाम नहीं है वो लोगों में प्रभु देख नहीं सकता। मैं देखता हूँ बहुत पढ़े लिखे बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े जो है प्रसिद्ध, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते रहते। ईर्ष्या द्वेष एक ऐसी अग्नि है जो दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है, पहले अपने को जलाता है फिर दूसरे को जलाता है। और जरूरी नहीं कि दूसरा जले, उसको एक्सेप्ट ही ना करे दूसरा, हो सकता है दूसरा ना जले, लेकिन करने वाले तो जरूर जल जाएगा। यहां पर गुरु महाराज कहते हैं या तो हृदय में हरि के नाम को धारण करो, या ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोह मोह अहंकार, एक जगह में एक ही वस्तु रहेगा, ये तो निश्चित बात है। हरि के नाम को हृदय में रखना है और सब में प्रभु को देखना है तो भांडा धोई बैस धूप देवो तो दूधे को जाओ, हृदय को साफ करना है क्योंकि प्रभु को बैठाना है। जिस प्रकार से सबरी रोज आश्रम को साफ करती है, फूलों को बिछाती है, रास्ते को धोती है कि भगवान राम आएंगे। इसी तरह से नित्य प्रति सेवा और सुमरण के द्वारा हृदय को साफ करना है, क्योंकि साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बैठना है हमारे हृदय में। ये सुखमनी साहेब जो है, साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज का स्वरूप है। ये जो कथा सुन रहे हो, ये साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं, इस आंख से नहीं, अंदर आंखों से। इस जैसे जैसे आप इनकी वाणी को सुनोगे, आपके हृदय में दर्शन देंगे। लेकिन वो आकर के खलो जाएं, बैठने का जगह ना होवे, वो कैसे बैठेंगे? इसलिए पहले ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब को हटा करके गुरु महाराज को बैठने के लिए पवित्र जगह बनाना है। उर्धारे जो अंतरनाम सर्व में पेख है भगवान। वेद में एक मंत्र आता है, यस्तु सर्वानि भूतानि आत्मय अभूत विजानतः तत्र कह शोकः कह मोहः एकत्वम अनुपस्यतः। यस्तु सर्वानि भूतानि आत्मय अभूत विजानतः, जो प्राणी अपनी आत्मा को सब में दर्शन करता है, यस्तु सर्वानि भूतानि आत्मय अभूत विजानतः, ये जानता है कि यही आत्मा सबके अंदर है और जो सबके अंदर है वही इसके अंदर है। वेद भगवान कह रहा है तत्र कह शोक, उसको किस बात का शोक है? कह मोह, वो किससे मोह करेगा? अर्थात शोक मोह से रहित हो करके वह परमात्मा के चरणों में निवास हो। शोक मोह उसी का निवृत्त हो सकता है जो सर्व में पेख है भगवान। उसी बात को गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि यदि शोक अर्थात दुख, मोह अर्थात जगत से के प्रति आकर्षण, ये दो चीज़ें तभी नष्ट होगा जब सर्व में पेख है भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है। ऐसा पुरुष जो एक एक क्षण श्वास अंदर गया तो वाहे, श्वास बाहर गया वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, चलते फिरते सोते बैठते जागते जो प्रेम पूर्वक अपने को सदगुरु के चरणों में डालकर प्रभु के ठाकुर के नाम को निमक निमक एक एक क्षण जो लेता है और परमात्मा को नमस्कार करता है, हे वाहेगुरु मेरे किए कुछ नहीं होना है, जब तक आप हमारे हृदय में बैठकर आप हमको नाम दान नहीं दोगे, आप हमसे नाम नहीं जपवाओगे, एक एक क्षण जब तक आपकी याद नहीं आएगी तब तक हमारा जो अज्ञान है, अंधकार है, वो दूर नहीं होगा। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो वाहेगुरु कृपा करेंगे। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है। ऐसा पुरुष को अपरस कहते हैं। अपरस का भाव ये है, रहता तो जगत में है लेकिन जगत का कोई माया मल अविद्या उसको स्पर्श नहीं करता। नानक ओह अपरस सगल निस्तार है, ऐसा पुरुष जो संसार में रहता है शरीर करके लेकिन उसका चित्त प्रभु से जुड़ा हुआ है, वह इस संसार में रह करके लाखों लोगों को तारता है, प्रभु के चरणों में जोड़ता है उसे और उसको उसके अंदर भक्ति प्रदान करता है, उसके अंदर गुरु ज्ञान प्रदान करता है, ध्यान के माध्यम से ज्ञान और सुमरण के माध्यम से भक्ति। अष्टपदी, मिथ्या नाही रसना परस। ऐसा जो अपरस पुरुष है वो अपनी जिह्वा से मिथ्या नहीं बोलता। मिथ्या का भाव ये है जिसका जीवन से कोई लाभ नहीं है। कभी कभी मैं देखता हूँ आपस में बैठते हैं लोग घंटों, वर्थलेस टॉकिंग, जिसका कोई जीवन में उसका भला होने वाला नहीं, ऐसे बातें करते जाते हैं, सुनी जाते हैं। सुन, एवरी टाइम अवेयरनेस। आप ये सोचो कि जगत में हम सबसे कीमती हैं। कीमती किस बात के लिए? क्योंकि हम परमात्मा के पुत्र हैं, इस बात से कीमती हैं। और वह जो हमारा एक एक क्षण है, एक एक श्वास जो है, वो प्रभु के सुमरण के लिए मिला है, संसार के उस बातचीत करने के लिए नहीं मिला है जिससे हमारी वृत्ति, हमारा मन नीचे जाए। वो चर्चा कभी नहीं सुनना है जिसके सुनने से मन गंदा हो। कभी भी विषय विकार की बात सुनना ही नहीं है, क्योंकि वो जहर के समान होता है। मिथ्या नाही रसना परस। अपनी रसना को, जिह्वा को संसार की वो बातें रसना पर नहीं रखनी है जिससे किसी का दिल दुख जाए। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है ऐसी वाणी बोलना कि अगले के जाके कलेजा में लगे, तो वास्तविक बात यह है वो किसी के कलेजे में नहीं डाल रहा है, क्योंकि उसके कलेजे में परमात्मा बैठा है। तो यदि हम परमात्मा को ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे परमात्मा को दुख हो और हम चाहेंगे शांति, ये कैसे हो सकता है? आप किसी को नहीं बोल रहे हो, जिसको भी बोल रहे हो ने उसके हृदय में राम बैठा है, वाहेगुरु बैठा है। अब वाहेगुरु को बोल दिए इसका मतलब। और वाहेगुरु को जब सिफत सलाह के अलावे संसार की ऐसी बातें आप बोलेंगे जिससे अगले का दिल दुखेगा, तो उससे आपको कैसे शांति होगी? शांति वही पा सकता है जो शांति को लुटाता है। सुख वही पा सकता है जो पहले दूसरे को सुख देने के लिए चाहता है, मन से, वाणी से, हाथ से। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोई, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होत। इसलिए कर्मों को बीजने से पहले याद रखो कि मैं क्या कर रहे हैं। एवरी टाइम एवरी वेयर यू हैव टू अलर्ट, यू हैव टू कॉन्शस कि कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वही हमको अनेक गुना करके भुगतना है। इसलिए कर्मों को करने से पहले बहुत सावधानी की आवश्यकता है। गुरु महाराज कह रहे हैं मिथ्या नाही रसना परस। रसना से जो है मिथ्या वचन नहीं बोलना है, झूठ वचन नहीं बोलना है, किसी के दिल दुखाने वाला वचन नहीं बोलना है। मन में प्रीत निरंजन दरस। और मन के साथ यदि प्रीत जुड़ जाता है तो वो हृदय हो जाता है, और अकेला मन जो है वो खुश्क होता है। मन के साथ गुरु महाराज यहाँ प्रीत शब्द जोड़े। मन में जो है प्रभु निरंजन, माया मल अविद्या से रहित जो निरंकार है वाहिगुरु अकाल पुरुष। मन में प्रीत निरंजन दरस। मन में एक ही तड़प हो के हे वाहिगुरु एक बार दर्शन दीजिए खोल की बार, एक बार जो है इस अज्ञानता के पर्दे को हटा करके आप एक बार दीदार दे दो। उसके दीदार के लिए तड़फना, ये भक्ति है। पर त्रिय रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। पर त्रिय रूप न पेखे नेत्र, दृष्टि सृष्टि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। देखने देखने में फर्क है। एक आदमी अपनी आंखों में वासना डाल के देखता है और एक व्यक्ति सब में आंखों में भी प्रभु का नाम डालकर सब में भगवान का दर्शन करता है। एक व्यक्ति ये देख रहा है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, और एक जो है ये देख रहा है कि दूसरे के पॉकेट का धन कैसे मेरे पॉकेट में आ जाए, दूसरी की स्त्री मेरी स्त्री कैसे बन जाए, जो भी वासना की चीज़ें हैं वो मेरा हो जाए। पर त्रिरूप न पेखय नेत्र साध की टहल संत संग हेतु। साध की टहल का भाव है संतों की सेवा करें, साधुओं की सेवा करें और सत्संग करें। संतों का संग, साधुओं की सेवा, एक क्षण के लिए भी यदि किसी संत को देख करके तुम्हारा चित्त खराब होता है तो समझो तुमने बहुत बड़ा पाप मोल ले रहे हो, अपने आगे तुमने गड्ढा खोद रहे हो। संत को देखो, उसमें प्रभु का दर्शन करो। जो सिर साईं न निवै सो सिर दीजै डार। किसी संत महापुरुष को देख करके मस्तक नहीं नीवा होता तो वो मस्तक ही नहीं है। गुरु महाराज तो कहते हैं उस मस्तक को काट ही देना चाहिए। जो सिर साईं न निवै सो सिर दीजै डार। और जिस पिंजर में बिरहा नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु से मिलने के लिए तड़फ नहीं है, कहते उस शरीर को जला ही देना चाहिए। क्या रखना है? दो बातें, संत महापुरुष नाम लेवा को दूर से ही देखो, दूर से ही अपने मस्तक को झुकाओ, उससे अहंकार दूर होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। साध की टहल संत संग हेत, साधुओं से हेत करना है, प्रेम करना है और उसकी सेवा करना है। साहेब श्री गुरु अर्जन, अब ये जो गुरु महाराज कह रहे हैं इसके ऊपर चलना ही गुरुमुख होना है। इसको पढ़ना मात्र और चलना नहीं, ये वही तोते वाली बात हो जाएगी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और जाल में फंसना नहीं। बहुत कम लोग हैं जो इस मंत्र को जान लेता है और जाल देख करके उसमें फंसता नहीं है। नहीं तो फांसन की विध सबको जाने, छूटन की विध कोई, फंसने का तरीका सबको पता है, समझे ना। बहुत से लोग जो है घर बार छोड़ के भी फंस जाते हैं, क्योंकि चाले थे हरि भजन को कि भाई माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके चले थे कि एक निरंकार का स्मरण करेंगे। लेकिन वही क्रोध, वही वासना, वही निंदा, वही ईर्ष्या, जब यही कुछ करना था तो घर बैठना था, फिर घर काहे को छोड़ा। जो गृह करह ता धर्म कर, यदि गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है तो धर्म करो, आए गए की सेवा करो और प्रभु का नाम लो, संतों की सेवा करो। जो गृह करह ता धर्म कर, और नहीं तो कर वैराग, और नहीं तो सब कुछ छोड़ करके एक हरि नारायण करके दो रोटी खाओ और प्रभु का स्मरण करो। जो गृह करह ता धर्म कर, नहीं तो कर वैराग, वैरागी बंधन करे। वैरागी बन करके सब कुछ छोड़ करके प्रभु के स्मरण के लिए घर से निकल जाने के बाद भी यदि वही सांसारिक पापड़ बेलना है, वही ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली क्रोध अंदर रखना है, तो गुरु महाराज कहते हैं ताको बड़ो अभाग, वो बहुत अभागा है, वो तरस आता है उसको देख करके। कर्ण न सुने काहो की निंदा, कान से किसी की निंदा न सुने। निंदा एक जहर है, जहर खाने पर ने थोड़ा देर में असर करता है, तुरंत नहीं मर जाता आदमी, थोड़ा देर लगता है, लेकिन निंदा रूपी जहर खाओ ना, खाते ही मन मलिन हो जाता है एक क्षण के अंदर। एक घंटा सत्संग सुन के जाओ, बाहर आप एक क्षण निंदा सुन लो, ये सारा सत्संग जो है। जैसे किसी के घर जाओ आप, 36 प्रकार का भोजन रख दे और खाने के लिए बड़ी तैयारी करने लग जाओ, कोई आके कह दे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बूंद इसमें जहर है, ज़्यादा नहीं है, कितना है, एक बूंद, आप खाओगे, आप जितना मर्जी भूख लगा रहे आपको, वो नहीं खाओगे। इसी तरह से यह जो सत्संग है, ये 36 प्रकार का भोजन है, इसमें निंदा का एक बूंद पड़ जाए तो सब खराब हो जाए। करण न सुने काहू की निंदा, गुरु महाराज जो जो उपदेश कर रहे हैं उसको हमें ट्राई करना है, इससे बचने का। सबते जाने आपस को मंदा, लेकिन हमारा जो है, हम जनाने की कोशिश करते हैं कि आई एम क्लेवर। चार आदमी बैठते तो क्या करते हैं, यही कोशिश होती है कि लोग कहें कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, ये बहुत बड़ा ये है, अपनी प्रशंसा सबको प्रिय है। लेकिन जो गुरुमुख है, गुरुमुख के बारे में गुरु महाराज कहते हैं जो अपरस है, सबते जाने आपस को मंदा। कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो न भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। हमारा तो मित्र वो है जो नीवा है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हो अत नीच, नानक तिनका संग साथ, बढ़िया से हो प्यारे से। बड़े बड़े जो दिशा है लोग, वो तो अहंकार लेकर के सिर पर फिरते रहते हैं, उनका तो पाँव नहीं लगता धरती पर। गुरु प्रसाद बिखिया प्रहर है, गुरु की कृपा से, गुरु की जो है प्रसाद से, जो बिखिया है, जहर है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसको जो है सो दूर कर दे। मन की वासना मनते टरे, मन के अंदर जो वासना है, इच्छा है, उसको जो है सत्संग सुन करके उसको दूर कर दे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे ऐसा को ऐसा अपरस। गुरु महाराज कहते हैं इंद्री जित पंच दोख ते रहत, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है, मन विषयन तय रोकनो, समत ही कहत सुधीर, इंद्रिय गण को रोकनो दम भाकत बुधवीर। अपने मन को विषयों से रोकने का नाम सम है, और इंद्रियों को विषयों से रोकने का नाम दम है, सम दम। जब विषय की तरफ जाए तो उससे मोड़ ले, अपने मन को मोड़ ले, ज्ञान इंद्रियों को मोड़ ले, इंद्री, तब जाकर के एक समय आएगा कि इंद्रियजित बनना है। विषयों से मन को मोड़ना है और साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में जोड़ना है। जब जोड़ोगे तो वो सुखमणि देंगे, अर्थात आनंद देंगे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, पंच दोख क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच दोख हैं, इससे रहत हो जाए। नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, ऐसा जो अपरस है, ऐसा जो पुरुष है जिसका गुरु महाराज ने लक्षण बताए हैं, कहते हैं कि कोटन में नानक हो, करोड़ों में ऐसा कोई व्यक्ति होता है, हैण विरले ना ही घने, फैल पकड़ संसार, बाकी तो जो है सारे फंसे। गुरु महाराज कहते हैं करोड़ों में ऐसा कोई होता है, और यदि कोई ऐसा है तो उसकी सेवा, उसका दर्शन, और वो जो है लाखों को तार देता है, वो इस संसार में चलते फिरते वो तीर्थ होते हैं। आगे गुरु महाराज वैष्णव, वैष्णव कौन है उसका लक्षण बताते हैं। आम लोग, आप जाओगे ने लिखा होता वैष्णव ढाबा, नहीं होता, बहुत जगह लिखा होता है, क्या लिखा होता है, वैष्णव ढाबा का मतलब ये है कि यहाँ पर शुद्ध शाकाहार भोजन मिलता है। जिसका इष्ट विष्णु होता है उसको वैष्णव कहते हैं, लेकिन जो सच्चा वैष्णव कौन है उसका गुरु महाराज यहाँ वर्णन करते हैं। वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, वैष्णव वो है जिसके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा हो, जिसकी भक्ति को देकर के प्रभु रिझ जाए, ऐसा जो है, ऐसा जो भक्त है उसको वैष्णव कहते हैं। भक्त तो रिझता ही है, कभी कभी परमात्मा भी रिझ जाता है भक्ति को देख करके, समझे ना। ऐसा जो वैष्णव है उसका लक्षण कह रहे हैं गुरु महाराज, वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न। विष्णु की जो माया है ये किसी को छोड़ता नहीं है, सबको लपेट लेता है। वो माया जो है, एक और भी परिभाषा है वैष्णव का कि जिसकी वृत्ति जो है 24 घंटा भगवान के चरणों में लगा रहता है वह वैष्णव है। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि सच्चा वैष्णव कौन है, वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न विषण की माया ते होए भिन्न। विषण की जो माया है वो बहुत प्रबल है। भगवान कहते हैं कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया। हे अर्जुन, मेरी माया जो है बहुत बहुत कठिन है, बहुत दुस्तर है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। कोई कोई जिसके ऊपर गुरु की विशेष कृपा हो वही मेरी माया को पार पाया जा सकता है, नहीं तो हर एक आदमी उस लपेट में आ जाता है। एक समय की बात है कि नारद जी जा रहे थे, वो तो पता ही आपको, 24 घंटा नारायण नारायण, तीनों लोक, एक दिन में तीनों लोक सैर करके आ जाते हैं। नारायण नारायण करते करते देखे कि एक बहुत अच्छा बगीचा है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, बहुत खुशबू आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, हरियाली देख करके वो बैठ गए वहाँ पर। और बैठ करके नारायण नारायण करते करते ना उनकी समाधि लग गई, और समाधि जब लग गई उनकी तो वहाँ से इंद्र जो है, इंद्र को ईर्ष्या हो गया, क्योंकि भक्ति ज़्यादा करोगे ना तो भी ईर्ष्या हो जाता है लोगों को, समझे कि नहीं। इंद्र को ईर्ष्या हो गया कि ऐसा हम ना हो कि ज़्यादा भक्ति करके ये हमारा जो पद है इंद्र पद ये ना ले ले। तो इंद्र ने उर्वशी को भेजा, उर्वशी अति खूबसूरत अप्सरा है, उसको भेजा कि जाओ उसको डुलाओ। उर्वशी ने काफ़ी मतलब सुगंधी फूले अपने केसों में और बहुत हाव भाव जो है सारा जो है उसने किया, लेकिन नारद का मन नहीं डोला, समझे ने। नारद को अहंकार हो गया कि जिस चेतन माया से बड़े बड़े ऋषि महात्मा और बड़े बड़े लोग डोल गए हैं, मैं नहीं डोला। वो एक्चुअली क्या था कि वो जो धरती थी ना, वो जो बगीचा था, उस बगीचा में भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, और एक बार काम प्रवेश कर गया तो भगवान ने तीसरी आंख खोले। तीसरी आंख खोलने से, क्योंकि कहानी लंबी है मैं इतने शॉर्ट में बता देता हूँ, कि भगवान शंकर ने आंख खोले उससे कामदेव भस्म हो गया। तो वहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर तक वह क्षेत्र ऐसा था कि उस 10 किलो क्षेत्र में माया का प्रवेश नहीं था। तो उर्वशी 10 किलोमीटर दूर से ही काफी कोशिश करती रही, अंदर तो आ नहीं सकती थी, और नारद वहां तपस्या कर रहे थे। नारद को अहंकार हो गया कि मेरी भक्ति के कारण मेरे अंदर इतना गुण है कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। और जब किसी के अंदर कुछ शक्ति आ जाए ना तो वो बताने से नहीं रहता, और ज्यों ही आदमी बताने लगता है उसी वेले वो पतन उसका शुरू हो जाता है। इसीलिए जब ध्यान करो, सुमरण करो और कुछ अंदर दर्शन होने लग जाए तो या तो गुरु को बताओ, किसी संत महापुरुष को बताओ, और नहीं तो अंदर जजब करके रखो, किसी को बताना नहीं, क्योंकि बताते फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। नारद जी लोगों को बताता, जहाँ जाएं लोगों को बताते जाएं। अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, पिताजी आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, हमने तो कामदेव को जीत लिया है। उर्वशी आई, हाव भाव करी, मैंने जो है एकदम जीत लिया, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, कहते हैं बेटा तुम ऐसा कर, मेरे से तो बोल दिया मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये बात किसी को नहीं कहना, नहीं तो ये माया बहुत दुस्तर है, कब गिरा दे ये पता नहीं है, किसी को नहीं कहना, लेकिन कहाँ टिकने वाला। वो गए जा कर के शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान जी, आप हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, कुछ देखा है आपने आज? कहते नहीं देखा, तो मैं सिर्फ प्रभु के चरणों में मेरी वृत्ति लगी रहती है। आपने क्या देखा? वही तो मैं बताने के लिए आया हूँ। आज हमने काम को जीत लिया है, आज तक दुनिया में किसी ने नहीं जीता, हमने जीत लिया, कोई प्रभाव ही नहीं हुआ मेरे ऊपर काम का। शंकर भगवान कहते हैं ऐसा है नारद, तुम भक्त हो इसलिए मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि ये किसी जो ऐसा ना हो कि जाके विष्णु को नहीं बता देना, क्योंकि इसके बाद वहीं जाना है तुमने, ऐसा नहीं करना गलती। कहते इसमें क्या है, ये तो सच्चाई है, सच्चाई को बताने में क्या हर्ज है। जब कोई व्यक्ति महापुरुषों के वचन को ना माने, फिर समझो उसका जो है पतन हो ही जाता है। वो जी वहाँ से गया और जाके विष्णु भगवान को आज नमस्कार नहीं करता है। पहले जाता था, चरणों में बैठता था, है जी, और विष्णु भगवान के साथ बैठ गया। आज वो सोचता है मैं कम थोड़े हूँ, इतनी शक्ति मेरे अंदर है, बड़े बड़े लोग मोहित हो गए हैं, मैं कम थोड़ा। आप पहले तो वो चरणों में बैठता था जाके, आज जो है पहले उन चरणों में मत्था टेकता था, आज फॉर्मेलिटी के लिए नमस्कार हाथ जोड़ के कर। विष्णु भगवान जी आपको पता है कुछ, साथ बैठ गया। हमने जो है कामदेव को जीत लिया है। अच्छा, ये तो बड़ी महानता है तुम्हारी, बड़े बड़े लोग आज तक किसी ने जीत नहीं पाया, तुमने जीत लिया है, चलो ठीक है। अच्छा आप किधर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, और भी रास्ते में लोग मिलेंगे, उनको महिमा सुनाएंगे कि हमने कामदेव को जीत लिया है। कहते हैं ठीक है भाई, और कुछ रोटी पानी चाय पानी लेना है, टोस्ट वगैरह खा लो है? और वहाँ पर जी जो भी पीना था खाना था, जैसे आप लोग यहाँ लाते हो ना तरह तरह की चीज़ें, भगवान ने खिला दिया और वहाँ से जाने लगे। भगवान ने मुश्किल से अभी 1 किलोमीटर गया होगा नारद, वहाँ पर देखता क्या है, एक बहुत सुंदर वन, हरियाली भरा हुआ और नाच गाने, बहुत नृत्य, तरह तरह के खुशियाँ। वो जा तो रहे थे और जगह, क्योंकि उनका तो 24 घंटा नारायण नारायण सुमरण करना होता है। वो सोचे कि चलो देखाएं क्या चीज़ है। वो जी नगर देखने के लिए देखें तो चारों तरफ चमाचम, सुंदर ही सुंदर, एवरीथिंग सुंदर, एवरी वेयर सुंदर। वो सुंदरता को देख करके धीरे धीरे जो है कहते हैं ये क्या, किस चीज़ का उत्सव मनाया जा रहा है। कहते हैं यहाँ पर एक राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, उसकी अति खूबसूरत कन्या है, उसका शादी होना है, उसके लिए स्वयंवर रचना है, बड़े बड़े राजकुमार लोग आएंगे सारे, वो राजकुमारी जिसके गले में माला डाल देगी वो उसका पति हो जाए। वो जी देखते 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 राजा के दरबार में पहुंच गया। वो राजा कहते हैं कि संत जी आप ऐसा करें, हर एक माँ चाहती है कि मैं अपनी लड़की को तोड़ रहा हूँ प्राय के घर में, पता नहीं होता, अनजान घर में जा रहे हैं, कैसे रहना, सबसे ज़्यादा माँ को होता है, पिता को भी होता है लेकिन थोड़ा लापरवाह नहीं, माँ को बहुत दर्द होता है कि मैं अपना हृदय का जिगरा जो है सो दे रहे। माता कहती है संत जी आए हैं, इनसे ज़रा हाथ ही दिखा दो लड़की का जो है सो। हर एक व्यक्ति के अंदर भविष्य जानने की तमन्ना होती है, ऊपर से जितनी मर्जी कट्टरता कर लेंगे अंदर से होता ही है, समझने हर एक कथा समझे अकेले मर। ये जो बातें हैं ना बहुत अजीब है, किसी को नहीं बताएंगे लेकिन हम जान जाएं। वो नारद को उस लड़की का हाथ दिखाते हैं जी, नारद हाथ देखती है और उसका मुख भी देखती है, समझे, कभी हाथ देख रहे हैं नारद, कभी उसका मुख देख रहे हैं, देखते देखते जो है हाथ वो मोहित हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये जो कन्या है ये मेरे गले में माला डाल दे तो कितना अच्छा है। वो कहते हैं कि इसको बहुत अच्छा वर मिलेगा और वो जो होगा उसका चेहरा विष्णु के समान होगा। ऐसा कह करके जी वो सीधा जो है आज नारद जो है विष्णु भगवान के पास गया, भगवान के आज चरणों में गिरता है। जब मतलब होता है ना आदमी तो चरणों में जाता है ना, आज चरणों में गिर करके प्रार्थना करता है, हे भगवान आप ऐसा करें कुछ समय के लिए, नॉट परमानेंट, फॉर द मोमेंट, आप अपना जो चेहरा है खूबसूरत, जिससे आपकी इतनी खूबसूरती जगत को मोह लेते हैं, कुछ समय के लिए वो चेहरा मुझको दें। और ये भी ख्याल रखें कि जिससे मेरा हित हो। विष्णु भगवान सोचते हैं कि मैं तो इसको चेहरा दे देता कोई बात नहीं, लेकिन साथ में जो एक पंक्ति बोल दिया है ना इसने कि जिससे मेरा हित हो वो करना है आपने, तो हित तो उसी से होगा जो हमने जो है सो इसको करना है। कहते हैं ठीक है जाओ, हमने दे दिया तुमको अपना चेहरा। वो जी वहाँ से गया, बड़ा अहंकार होकर के वहाँ पर गया और जा करके कुर्सी पर जो है ना ऊंचा कुर्सी पर बैठ गया, ताकि लड़की आएगी सीधे मुझको देखेगी, गले में माला डाल दे। वो लड़की हाथ में जो है सो माला लेकर के जा रही है, वो नारद जो है ऊंचा होकर के अपने को दिखा रहा है, समझे। जब देखा कि आगे जाने लगी जिन लड़की, उसको देख करके आगे जाने लगी, तो नारद जो है ना पीछे से हट करके उसके सामने हो गया। वो और राजा लोग हंसने लग पड़े, कहने लगे तू अपना चेहरा तो देख। भगवान विष्णु ने उसको बंदर का चेहरा दे दिया था। दो राजा आपस में कहते हैं कि बंदर जैसा मुंह है इसका, और ये सुंदर कन्या को जो है सो वरना चाहता है। लोगों ने कहा कि तुम्हारा चेहरा बंदर जैसा है। वो नारद गया जी और जाकर के अपना मुख देखता है पानी में, तो वास्तविक में मेरा जो है सो मुख। वो बड़ा क्रोधित हुआ, बहुत उसका मन खराब हुआ, और जा करके भगवान विष्णु को श्राप भी दे दिया। फिर जा करके थोड़ा समय के बाद भगवान विष्णु ने जब अपनी माया को खींच लिए, तो देखता है नारद कि सब कुछ वैसा ही है, कुछ बदला तो नहीं है। और अपने किए पर उसको बहुत ग्लानि होता है कि मैं जो लोगों को बताता फिरता था कि मैंने काम को जीत लिया, मैं तो काम का दीवाना हो गया, और क्या क्या हरकत नहीं करता रहा लोग जो है राजाओं के बीच में, मैं कभी जो है कुर्सी के ऊपर चढ़ करके अपने को दिखाऊं, कभी इस तरह से करूं। वो अपना जो पागलपन था ना उस पागलपन पर हंसता है, और भगवान विष्णु को जब सारा माया उसके मन से दूर हुआ, जाके भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा कि भगवान मुझे क्षमा कर दे। कहते मैं तो तुमको अपना रूप दे देना था, लेकिन जो तुमने बोला ना कि हे प्रभु जिससे मेरा हित हो वो काम करना है, जिसके कारण मैं तुमको ये चेहरा दिया था। हे नारद, इस संसार में कोई भी व्यक्ति माया से बच नहीं सकता है, सिर्फ यदि किसी के ऊपर गुरु की कृपा हो, प्रभु की कृपा हो। जिस तरह से जोगा जब डोलने लगा तो साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हाथ दे के बचाया। गुरु की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो, तभी बच सकता है व्यक्ति, नहीं तो ये जड़ और चेतन ये दोनों माया जो है ये तो समझो कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। ईश्वर की से जब जो है गिरने लगो तो प्रभु से प्रार्थना करो। गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, बिशन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हो वह निःकर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। उस इंद्री जित पंच दोखते रहत, आज यहीं तक रहने देता हूँ क्योंकि समय हो गया है। जो व्यक्ति गुरु की कृपा से अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा इस संसार करोड़ों में कोई भी है। और वैष्णव सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, जिसके ऊपर प्रभु परमात्मा प्रसन्न है, और विष्णु की माया से जो भिन्न है, तीनों गुणों से जो अतीत है, ऐसा जो वैष्णव है वह पूजने योग्य है। कर्म करत हो वह निःकर्म, वो कर्म करता हुआ भी जो कर्म जिसको स्पर्श नहीं करता, ऐसा जो वैष्णव है वो पूजने योग्य है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा ही चिंतन करता है, ऐसा ही जीवन अपना अपनाता है संसार में रह करके, तो उस भक्त का, उस जिज्ञासु का, उस सत्संगी का लोक सुखे परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।